क्षमा करो। आज मैं किसलिए आया हूँ आपके यहाँ? चोरी करने के लिए, और दूसरी कोई चॉइस मेरे पास नहीं है। आप बस मुझे ये चांस दो, मैं चोरी करना चाहता हूँ। तो पूरा दिन में पूरा सर्च करके गया, कहाँ क्या है, कहाँ पोशाक पड़ता है, कहाँ पैसे गिने जाते हैं। हम भी सब देख ही रहे थे, चोर की तरह ही है हमारा एटीट्यूड। हम ही कोई प्रार्थना तो की नहीं इतने भीड़ भाड़ में, है ना। तो वैसे ही ये गया, और फिर रात्रि में सोचा, तो सब लोग सो जाते हैं, एक रात्रि में जो न्यू मून पूर्णिमा का चांद निकल आया था और तूफानी रात्रि थी, सब लोग सो गए थे तूफानी रात्रि में। तो उस समय चोर हट्टा कट्टा बहुत शक्ति संपन्न था, ये चढ़ता है उस दीवार के ऊपर, और क्योंकि बहुत सारा बारिश आ रहा था और सब जगह मिट्टी थी और मिट्टी से बहुत मड़ कीचड़ हो गया था, तो इसके पाँव में बहुत सारा कीचड़, स्लीपर या शूज पहन के तो नहीं गया था, कीचड़ लग जाता है पाँव में। और आपको देखा, आपने कभी कीचड़ में चले आप लोग, शूज हो जाते हैं पाँव में, आपने देखा शूज कभी अपने पहने कीचड़ के? मुझे याद है हम तो कॉम्पिटिशन लगाते थे किसका बड़ा शूज होगा, बचपन में बड़े बड़े खेतों में चलते थे तो इतना लेर हो जाता था पाँव के नीचे, जब पाँव उठाना हमारे लिए कठिन होता था और फिर गुस्से में रनिंग रेस करते थे। तो वैसे इसके पाँव में मिट्टी के ही कीचड़ के शूज जैसे हो गए, मड़ लग गया और उसने जंप मार के आ गया अंदर, और जैसे वॉल को उसने क्रॉस किया तो सोचा क्या मैं डेंटिस्ट के पास जाना, इतना सारा मड़ मेरे पाँव में लगा है कीचड़, थोड़ा सा स्क्रैप करता हूँ, क्या कहते उसको, रगड़ता हूँ एक कोने में, जो पत्थर होते हैं नीचे सोचो फर्श है, एक कोने में उसने अपना पाय ऐसे रगड़ दिया तो थोड़ा सा बहुत सारा वो मिट्टी जो है कीचड़ है वहां से उनके पाँव से, बंदूकधारी रिपोर्ट इधर, तो उनके पाँव से वो जो कीचड़ है वो उधर रह जाता है, और फिर अंदर जाता है वो, और तो देखा कि इतना सारा सब कुछ सुवर्ण का है डेंटिस्ट के सामने, किसमें ले जाओ, कुछ लेने के लिए नहीं था। देखा धोती मैंने पहना हुआ है, क्या खोल देता है, धोती, धोती खोलता है ऐसे डाल देता है, जो भी चीजें उठाता है बालाजी की, कुछ आर्थिक प्लेट्स, गोल्ड्स, कुछ डायमंड्स, सारे उसमें डालता है, ऐसे बांध देता है प्रॉपरली, पता ना चले, धोती में बांधते तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या अपेलन सामान है, ऐसे बांधा और उसने डाल दिया पीछे। और जब निकलने लगा तो उसने फिर से प्रार्थना की, कृष्णा और बालाजी आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ क्या कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। तो सोचो कितना अद्भुत चोर है। और फिर क्षमा मांग के दौड़ने लगा, अभी पहले तो इजीली दीवार को लांग के जा सकता है, लेकिन अभी इस सोना जो लदा हुआ था पीठ पर बहुत अधिक, उसके साथ में चढ़ने लगा तो उसके लिए असंभव था चढ़ना, अचानक जोर से गिर जाता है उस सोने के साथ, जैसे आवाज होती है तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के उसकी चटनी बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मार मार के उसकी चटनी, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यह सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा कहाँ होता है, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मींस जो गुप्त रूप से आपके फोटोज खींचता है, चित्र मींस पिक्चर्स, और गुप्त मींस सीक्रेटली, आपको पता नहीं चलता वो क्या करते हैं, चित्रगुप्त अभी फोटोज खींचते हैं, आपका जो दैनिक कार्य का जो लेखा जोखा है वही फोटोग्राफ्स उनके पास, इधर लिखा होता है इधर फोटोग्राफ, कुछ बुक्स होती है ना राइट साइड लेफ्ट साइड में पिक्चर और राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन, मैंने भी एक बुक सोचा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक बुक जिसमें 100 स्टोरीज होंगी, इधर कार्टून सारे और इधर स्टोरी, उस स्टोरी का कार्टून, तो जल्दी पब्लिश करेंगे हम शायद 6 महीने में। तो वैसे ही ये चित्रगुप्त भी ऐसे सीक्रेटली फोटोज खींचता था, और चित्रगुप्त ने देखा इसने तो इतने सारे काले किए पाप में, सबसे पहले इसको तो वहां ले जाना होगा, कहा नरक यमदूतास ने, लेकिन उसी क्षण विष्णुदूत आते हैं और विष्णुदूत उसको बाकी जो व्यक्ति था जो चोर था उसको बचाते हैं। तो ये यमदूत पूछते क्या कर रहे आप लोग, कहते इसने दो बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं की महाराज जी के लिए। क्या किया है? दो महत्वपूर्ण सेवा की है। उन्होंने कहा कि इसके जितने भी पाप हैं इसने केवल बालाजी को प्रणाम किया उसी में इसके सारे पाप विनाश, क्योंकि बालाजी का एक नाम क्या है, वैन का जन। ये संस्कृत में ये नेम है वैन, जैसे राजा वैन थे भागवतम में, वैन मीन्स पाप और कट मीन्स जो सब नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से विष्णुदूत ने कहा कि इन्होंने तो वो किया है, प्रणाम किया है बालाजी को, और दूसरा क्या किया है, क्योंकि जो जहां ये जो फर्श है, फर्श का एक कोना निकल गया था और उसमें मिट्टी या सीमेंट की आवश्यकता थी, लगना भर जाना चाहिए था, इसलिए सेवा कर दी, उस स्थान को क्या कर दिया, लेप किया, भर दिया, जिससे उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से विष्णुदूत ने कहा इसने वैकुंठ में अपना घर बनाया है। जैसे पुराणस कहते हैं आप अपने जीवन में कृष्ण के लिए यहाँ घर बनाओ, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करो, टेम्पल बनाने में सहायता करो, तो कृष्ण आपके लिए क्या करते हैं, वहां घर बनाते हैं। इसने इतना छोटा सा सेवा किया लेकिन भगवान ने कितना बड़ा देखा, वहां उसके लिए वैकुंठ में स्थिति प्रदान की। इसलिए भगवान जो ये बालाजी है ये बहुत अधिक क्या है, कृपामय है। इस प्रकार से हजारों जो लोग हैं भगवान बालाजी की सेवाओं को स्वीकार करते हैं और वो उतनी ही मात्रा में उनसे क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बालाजी के डिवोटी थे, जैसे आज सुबह भी सुना ना क्लास हमने, सुबह भी चर्चा हो रही थी, किसकी चर्चा हो रही थी, अनंत अलवर, अनंत अलवर की चर्चा हो रही थी। तो अनंत अलवर के बहुत सारे पास टाइम्स हैं, उनके ऊपर एक बुक है अनंत अलवर द लाइफ, इसमें सारे नरेशन हमें पढ़ने के लिए प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो अनंत अलवर थे वो एक बार नंदन वन जो उन्होंने बनाया था वहां वृंदावन गार्डन जिसमें तुलसी और फ्लावर्स थी, ये जो फ्लावर्स या तुलसी तोड़ रहे थे भगवान के लिए, तो उस समय एक सांप आकर उनको काटता है। तो सांप काटता है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सांप काटता ही जाते हैं, नॉर्मली स्नान करते हैं और फिर से अपनी सेवा में लगे रहते हैं कि ऐसे ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या भावना था उनका, कुछ हुआ ही नहीं, हमें चींटी काटे तो हमें कितना आयु होता है। जो शहर में रहने वाले लोग हैं और रेन जो चिटियां होती है ना बहुत डेंजर होती है, वो काटती बहुत भयानक, हम काली चिटियों से इतना डरते हैं, और यहाँ बिच्छू काटे तो भी सोचो नहीं, अब उससे बढ़कर क्या काटे, सांप। अनंत अलवर को जो सांप ने काटा तो उन्होंने देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, और वो भगवान की सेवा में लगे रहे। उनके शिष्यों ने सोचा कि कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इन्होंने को सीरियसली लिया नहीं। इवन सब लोग और उनके शिष्य ने चर्चा कर रहे थे, इतना ही नहीं भगवान श्रीनिवास, भगवान कौन, श्रीनिवास, श्रीनिवास भी अंतर अंतर में जब थे आनंद निलय, क्या कहा था सुबह उन्होंने, आनंद निलय, तो उसमें जब निवास कर रहे थे श्रीनिवास, तो उन्होंने भगवान ने पूछा हे अनंत अलवर तुम क्यों प्रयास नहीं कर रहे हो ठीक होने के लिए, क्यों इसको कुछ मेडिसिन क्यों नहीं यूज करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो स्नान कर लिया है इस पुष्करणी में, पुष्करणी में जो वहां जो तालाब है टेम्पल के किनारे, और आप चाहते हो, भगवान को कहने लगे कि आप चाहते हो कि मैं विष दूर करूं, कौन से विष की बात करते हो आप। ऐसे भगवान को पुनः प्रश्न वाचक वचन बोलते हुए भगवान को सिखाने लगे। उन्होंने कहा हे कृष्ण, पूछना है बालाजी आप कौन से विष की बात करते हो, हाँ कि मेरे मेरे शरीर में पहले से ही कोबरा ने काटा हुआ है और उसमें पहले से ही बहुत अधिक विष है और वो विष कौन सा है, अहंकार। और इस संसार में भोग करने का जो विष है अहंकार या ममकार की जो भावना है ये विष पहले से ही मुझ में है, तो आप बताओ कौन से विष से मैं मुक्त हो जाऊं। इस सर्वसाधारण सांप ने काटे हुए विष से मुक्त करो अपने आप को, या पहले से हृदय में ये जो छह प्रकार के विष है काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि, हाँ इनसे मैं मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि यदि ये संसारिक विष मुझे बाधा करेगा मैं मर भी जाऊंगा तो सीधा खड़ा हो जाऊंगा आपके पास वैकुंठ में, ऐसे उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने, मर भी जाऊं तो कहां खड़ा हो जाऊंगा आपकी सेवा के लिए, इतना कॉन्फिडेंस है उनको। इसलिए है जो भगवान के नित्य मुक्त भक्त है उनको श्री संप्रदाय में क्या कहते हैं, एक शब्द मैंने बोला था आपको, नित्य सूरी। क्या कहते हैं, नित्य सूरी। तो नित्य मुक्त जो डिवोटीज है वो कभी उनको भय नहीं होता। भक्ति में हम उन्नति कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में मृत्यु का भय कम होने लगता है। यदि अभी भी हमारे हृदय में मृत्यु का भय है तो सोचना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहा हूं, ये निश्चित है। इसलिए उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं था। और उन्होंने कहा जो दूसरा वेश है वो तो मेरे शरीर आदि को मिनिस्ट करेगा, लेकिन जो मेरे हृदय में जो वेश है पावरफुल वो क्या करेगा, मेरे आत्मा का हनन कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे उस विष की परवाह नहीं है जो सांप ने काटा है, मैं तो केवल आपकी सेवा में रत होना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान बालाजी उनको कहते हैं कि हे अनंत अरवर तुम मुझे क्या हो, अत्यधिक प्रिय हो और आपका जो कंपनी है मैं सदैव एंजॉय करता हूँ एवरी डे। यदि आपको नहीं देखता हूँ, बालाजी कहते हैं अनंत अरवर को, तो मेरा जो दिन है वो उचित रूप से जाता नहीं है, मैं आनंद महसूस नहीं करता हूँ, दुखी रहता हूँ। इस प्रकार से भगवान का जो प्रेम किसके प्रति था, अनंत अरवर के प्रति था, डिवोटी के प्रति था। इस प्रकार से अनंत अरवर कई लीलाएं हैं, उनमें से लीला आती है कि अनंत अरवर एक बार अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम जा रहे थे, तो श्रीरंगम जाने के लिए वो ऊपर से हिल से नीचे आते हैं और कुछ डिसाइपल्स को लेकर निकलते हैं और जाते जाते हैं कुछ क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह वो अपने साथ लेके गए थे बालाजी का। और जब ऊपर से नीचे गए तो एक स्थान में उनको लगा कि हमें एक स्थान में बैठकर प्रसाद और जल आदि ग्रहण करना चाहिए, तो वो सारे लोग बैठ जाते वहां। और उस समय अनंत अरवर ने कहा कि किसी ने कुछ लाया है प्रसाद जब हम यहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर पा सकते हैं, तो उनके शिष्यों ने कहा हाँ। तो फिर कुछ शिष्यों ने अपने बैग से कुछ प्रसाद निकाला जल आदि के साथ, लेकिन देखा कि जो प्रसाद उन्होंने लाया था ऊपर हिल से सप्तगिरी हिल, वो हिल की कौन है साक्षात अनंत शेष, इसलिए उसका दूसरा नाम है शेषाद्री। क्या नाम है, शेष मीन्स अनंत शेष, आद्री मीन्स माउंटेन संस्कृत में, तो इसलिए उसको कहते हैं शेषाद्री। तो जब उन भक्तों ने अपने बैग से जो भी प्रसाद निकाला, देखा कि जितना प्रसाद लाया था वो चींटियों से भरा हुआ है, इस चीज से चींटियां ही चींटियां हैं। तो फिर इन भक्तों ने क्या सोचा कि इनको फेंक देते हैं, ये तो इधर ही फेंक देते हैं, लेकिन अनंत अरवर ने कहा नहीं। अनंत अरवर ने कहा ये सर्व साधारण चींटियां नहीं है, ये ऐसे महान जीव हैं जो कहां निवास कर रहे थे, शेषाद्री पर। तो ये जो वेंकटाचल हिल है इसके ऊपर निवास करने वाले जो जीव है वो सर्व साधारण नहीं है, भगवान के बहुत एक प्रकार से प्रिय है। जैसे हम वृंदावन में कहते ब्रजवासी भगवान के अत्यधिक प्रिय है, तो उसी प्रकार से इस शेषाद्री पर रहने वाले जो जीव हैं, वो बालाजी के प्रिय हैं, तो आनंद आलवर ने कहा, आनंद आलवर को कुलशेखर आलवर की याद आई। किसके? हाँ, कुलशेखर आलवर की याद आई। तो कुलशेखर आलवर ने कहा था कि हे कृष्णा, मुझे क्या करो, सप्तगिरी पर एक छोटा सा कीड़ा बना दो। हे श्रीनिवासन, मुझे क्या करो, सप्तगिरी पर इस हिल्स पर, ये प्रेयर था कुलशेखर आलवर का, मुझे एक छोटा सा कीड़े के रूप में जन्म दो। जैसे भक्तिनोद ठाकुर का प्रेयर है कि आप मुझे जन्म दो, कहां दे दो जन्म, एक वैष्णव के घर में दे दो, चाहे ह्यूमन फॉर्म में नहीं, कीड़े के रूप में उनके नाली में बहने वाला कीड़ा बना दो, ताकि उनके नाली से, घर के रसोई से जो किचन से धुले हुए प्रसाद आदि बाहर पड़ता है, तुम वैष्णव के घर में जन्म दे दो कीड़े के रूप में, ताकि मैं क्या कर पाऊंगा, भोजन जो उचित प्रसाद ग्रहण कर पाऊंगा। तो कुलशेखर आलवर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे एक तुच्छ कीड़े के रूप में जन्म लो वहां ऊपर उस माउंटेन्स पर, ताकि मेरा जो जीवन सफल हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उस दिन कहा था कुलशेखर महाराज की एक विशेष प्रेयर, क्या कहा था उन्होंने भगवान के वहां, कहा क्या बनू मैं, इसको याद है कुलशेखर आलवर के इसमें, कि आपका जो गर्भग्रह है, गर्भग्रह मीन्स जो अल्टर है, उस अल्टर के जो जहां डिटेल है वहां की न्यू न्यू नहीं क्या कहते हैं उसको, दहलीज, दहलीज बना दो, ये शब्द आपसे सीखा था, दहलीज बना दो, ताकि हमेशा भगवान को मैं देखता रहूं परमानेंटली। सो छोड़ो, ये ऐसी अमेजिंग प्रेयर है। इस प्रकार से इन्होंने, जब इनको याद आया कुलशेखर आलवर की इस प्रार्थना का, तो उन्होंने तुरंत कहा, इन चींटियों का सौभाग्य मुझसे अधिक बड़ा है। कौन कह रहे हैं? अनंत आलवर, कि मेरा इतना सौभाग्य नहीं है, इनका इतना सौभाग्य है, तो इनको हमें क्या करना चाहिए, वापस आप लोग चींटियों को वहां छोड़ के आ जाओ, कहा शेषाद्री पर। तो वो डिसाइपल गण आते हैं और शेषाद्री पर छोड़ते हैं। इस प्रकार से अनंत आलवर की कई सारी लीलाएं हैं, और ये एक एक की लीला है, एक प्रार्थना वो करते हैं कि एक बार बालाजी ने बहुत सुंदर श्रृंगार उन्होंने पहना था, बहुत सुंदर वस्त्र और श्रृंगार आदि किया था, और विशेष रूप से उन्होंने एक लताएं धारण की थी, जो लता होती है किसी बड़ी चीज को सर्कल करते हुए ऊपर जाती है, तो उसी प्रकार से भगवान ने ऐसी लताओं का एक विशेष वेश धारण किया था, क्रीपर्स, और जिससे जो भगवान को ऐसे बांधते हुए जा रहे थे, और जिससे बहुत अच्छा सुगंध निकल रहा था, और भगवान श्रीनिवासन बहुत अधिक आनंदित हो रहे थे अपने वेश को देखकर। कभी कभी हम अपने वस्त्र को देखते हैं तो सबसे अधिक क्या होते हैं, खुश होते हैं कि आज मैं कैसे लग रहा हूं या लग रही हूं। तो इसे भगवान ने सोचा, और आनंद तब आता है जब दूसरा हमें देखे और अप्रिशिएट करे। हम पूछते हैं, पूछते कि नहीं पूछते, आज मेरा तिलक कैसे है, आज मेरे क्लोथ कैसे है, और जब कोई अप्रिशिएट करते तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे भगवान ने सोचा, ये सारे लोग आके मुझे कैसे तो देखने में मग्न रहते चले जाते, कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं, तो किससे बात करते थे भगवान, अनंत आलवर से। अनंत आलवर को बुलाया, अनंत आलवर यहाँ, तो बालाजी ने बुलाया तो गए, और उन्होंने कहा, थोड़ा सा अपना ऐसे हाथ करते हो, कैसे दिख रहा हूं मैं आज। अनंत आलवर को भगवान बालाजी पूछते हैं, तो वो कहते हैं, आप तो बिल्कुल एक मछुआरे की तरह लग रहे हो, जो अपने जाले में मछलियां पकड़ता है। किसके समान लग रहे हो? मछुआरे के। अभी बालाजी को लगे क्या तुलना की है मुझे, जैसे प्रभुपाद कहते थे, स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनका सौंदर्य, वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं या वृंदावन की गोपिकाएं हैं उनके सामने मेंढक के समान है। इसके समान स्वर्ग की अप्सराएं मेंढक जैसे लगती हैं, किनके सामने? गोपियों के सामने। तो गोपियों का सौंदर्य क्या होगा, मतलब वो प्रभुपाद एक अमेजिंग टॉक दे रहे थे जिसमें कह रहे थे कि कृष्ण कितने सुंदर है, कहते कि इस जगत की सुंदर स्त्रियां हैं उनसे करोड़ गुना सुंदर स्वर्ग की अप्सरा है जिसका क्या कहते हैं नाखून के बराबर भी ये जगत की स्त्रियों का सौंदर्य नहीं है, ऐसे स्वर्ग की सुंदर स्त्रियां हैं। इसलिए श्रेषु रंभा उस दिन भी मैं श्लोक बोल रहा था कांचीपुरम में, स्त्रियों में सुंदर कौन है रंभा। तो फिर ऐसे प्रभुपाद ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे थे, प्रभुपाद ने फिर स्वर्ग की सुंदरियों की तुलना वैकुंठ और इन सबसे किया। और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये जो गोपिकाएं हैं जो मोस्ट ब्यूटीफुल है सबसे सुंदर है, लेकिन वो भी ऐसी गर्दन ऊपर करके आंखें बिना छपके एक नील युवक को देख रही है, कौन है वो, जो सोचो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, ऐसा प्रभुपाद कहते। तो उसी प्रकार से भगवान बहुत सुंदर है यहाँ बालाजी, लेकिन यहाँ बालाजी की तुलना किससे करते हो, मछुआरे से। अभी आप जाओ बहुत सुंदर सज धज के और आपकी तुलना कोई गधे से करे। ट्रेन में मैंने एक उदाहरण दिया था मैरिज का, किसी को याद है क्या, ऊंट या गधा। तो गधे का ऊंट का मैरिज था और गधा को इनविटेशन था, गधा सज धज के पहुंच गया जैसे विवाह में जाते सज धज के, तो गए तो ऊंट और ऊंटनी वहां बैठे हुए थे बड़े से सिंहासन पर, और मिलने गए और ऊंट तो देख ही रहा था कौन मेरे सुंदर की तारीफ करेगा, इतना हट्टा कट्टा लंबा पतला। तो गए और उन्होंने कहा अहो रूपम अहो रूपम, क्या बोला गधे ने, क्या रूप है आपका, क्या सुंदर लग रहे हो। अभी ऊंट को तो बड़ा आनंद हो रहा था अंदर से, फिर सोचा थोड़ा मैंने भी इसकी तारीफ करनी चाहिए, ददाति प्रतिगृहणाति, कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम दस दिन चलो मैं भी कर लेता हूँ और चाहते ना हम तारीफ। तो वैसे इन्होंने भी क्या कहा, सोचा कि मैं इतना लंबे समय से चल के आया हूँ और इतना अच्छा मैं गाता हूँ बाहर गलियों में मोहल्ले में सड़कों में, अभी यहाँ मौका मिल रहा है मुझे इस सबके बीच में गाने का। तो गधे ने अपने सुरे की तान छेड़ छेड़ दी और आवाज, गधे को देखा गाते हुए कभी आपने शहर में, कुछ गाड़ियों की आवाज के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं देता, विलेज में सब कुछ दिखता, गधा ऐसे मुंह ऊपर करके एक बार और लंबी लंबा सुर होता है उसका, गाने लगा तो ये ऊंट भी कहता है कि क्या आवाज है आपकी सुरीली आवाज। तो वैसे ही यहाँ इनकी तारीफ की भगवान की कि आप तो मछुआरे के समान लग रहे हो, और जैसे वो मछुआरा अपने जाल में मछलियों को पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बालाजी के बारे में। तो बालाजी किसको बुलाया था बालाजी ने, तो इस प्रकार से जब उनका गुणगान किया और उनको कहा कि आप मछुआरे के समान हो, तो फिर भगवान थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन भी करो ना इस एनालॉजी पे, कुछ मुझसे मैच नहीं कर रहा है। तो फिर वो कहते आनंद तालवर क्या वास्तव में ऐसे मछुआरे हो एक्सपर्ट कि आपने अपने सौंदर्य आदि का जाल बिछा दिया है और जिसमें इतने बद्ध जीव जो मछलियों के समान है उनको क्या कर रहे हो आप, फंसा रहे या पकड़ रहे हो और उनको सीधा अपने चरणों का स्थान प्रदान कर रहे हो इस संसार सागर से उनका उद्धार करके। इस प्रकार से भगवान जब ये एक्सप्लेनेशन सुना तो भगवान हंसने लगे, क्या करने लगे, इसलिए आनंद आलो क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है, क्या बोलते हो आप, क्या समझाते हो। इस प्रकार से भगवान एक्चुअली अत्यधिक आनंद अनुभव करते हैं जब वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान। इस प्रकार से आनंद तलवार भगवान की सेवा में रत रहते थे, उनके साथ ही सदैव कई प्रकार की सेवाओं में उनके साथ आदान प्रदान करते थे। तो ऐसे अनंत अलवर जो किसके डिसाइपल थे, किसके डिसाइपल थे, रामानुजाचार्य के, श्रीपाद रामानुजाचार्य की। टाइम क्या हुआ, कब तक हमें करना है? एक पास टाइम में सुनाता हूँ छोटा सा। पद्मावती वाला वो टाइम लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे उसमें। कितने मैं करूँ कंटिन्यू पद्मावती का पास टाइम? ठीक है, उसको समराइज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि भगवान बालाजी एग्जैक्टली कौन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाउडली
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक बार नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे और उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा कि ये वेंकटेश्वर भगवान कौन है, ये बालाजी कौन है, श्रीनिवास कौन है। तब सूत गोस्वामी उन ऋषियों को वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार जो नारद मुनि हैं, जिनको स्पेस मैन कहा जाता है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है देवर्षि नारद, जो नारद मुनि जिनके हृदय में दया बहुत अधिक है और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कौन से पुत्र हैं? मानस पुत्र। तो ऐसे नारद एक बार इस जगत में घूम रहे होते हैं और नारद के हृदय में दया होने के कारण वो जब इस संसार में देखा कि भगवान वास्तव में सबके पिता हैं, अहम मेज प्रदा पिता, लेकिन तब भगवान से नारद मिलते हैं और नारद से मिलकर भगवान कहते कि मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है। और भगवान को सबसे अधिक दुख होता है इस भौतिक जगत के जीवों के प्रति जो उनसे अलग हैं। तो नारद को कहते कि तुम्हें कुछ योजना बनानी पड़ेगी जिसके द्वारा ये भौतिक जो जीव हैं वो सरलता से मुक्त हो सकते हैं या इस मेरे धाम वापस आ सकते हैं। तो उस समय नारद अपनी वीणा को लेकर घूमते घूमते सरस्वती नदी के तट पर जाते हैं और वहां कई सारे ऋषि मुनि एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जो सारे संसार के जीवों के हित के लिए था। तो जब नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है ये यज्ञ, इसमें भगवान संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या होना चाहिए, किसी एक गोल के प्रति फिक्स हो जाना चाहिए। तो फिर उन नारद ने कहा या वो सारे ऋषि मुनि ये डिस्कस करने लगे कि वास्तव में ये यज्ञ हम कर रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ में यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, कौन है इसका असली भोक्ता, ये हमें जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें क्या करनी चाहिए, फिर परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा किसकी किसकी करेंगे, ब्रह्मा की, शिवजी की और भगवान विष्णु की। तो उन्होंने कहा कि चलो तीनों लोगों की परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे अधिक प्योर गुडनेस में है, कौन शुद्ध सत्वों में है। तो सोचा कौन जाएगा इन तीनों की परीक्षा करने के लिए, तो वशिष्ठ ऋषि और जो ऐत्रेय अत्रेय मुनि वगैरह हैं, अत्रि वगैरह, उन्होंने कहा ये सेवा हम लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे ऋषि मुनि थे, सोचा कि तीनों की परीक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम ये सेवा नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों की परीक्षा करना मींस अपने हाथ में कोयले को लेना, जले हुए गरम कोयले के लेना और अपने आप को क्या करना, जला देना। तो फिर सोचा कौन कर सकता है, ये सभी निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक ही है पर्सनालिटी, वो है भृगु मुनि। हाँ, तो भृगु मुनि को तैयार करते हैं और भृगु मुनि तैयार हो गए। भृगु मुनि तैयार होकर, भृगु भी किसके पुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र है, ये मर्यादा है, कृष्ण बुक में आप पढ़ेंगे तो जब ध्रुव बने फिर निकलते इनका परीक्षण करने के लिए है। सबसे पहले ब्रह्मा का परीक्षा करते हैं और ब्रह्मा के पास जाकर उनके पिता है और इतने बड़े आचार्य हैं, सृष्टि के पहले जीव हैं, लेकिन उनको उनका आदर सम्मान नहीं करते, उनको देखकर प्रणाम आदि नहीं करते, उनको नेगलेक्ट करते हैं जैसे कि देखा ही नहीं। तो ये देखकर मुझे नेगलेक्ट किया जा रहा है, आदर कौन जल रहा था? ब्रह्मा। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है। तो ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था उनके लिए, देखा तो ये मेरा ही बेटा है ध्रुवो। तो ध्रुवो वहां से चले जाते, देखते कि ये तो सत्वगुण में नहीं है। फिर वहां से किसके पास जाते हैं? शिवजी के पास। शिवजी के पास गए तो शिवजी ने तो भस्म आदि धारण किए थे और सांप गले में लटक रहे थे, और जैसे ध्रुवो को देखा तो भाई है शिवजी ध्रुवमणि के, तो देखा और शिवजी ने सोचा गले लगता हूँ, उन्होंने कहा हट यहाँ से, शरीर को सब राग वगैरह लगा के आप मुझे गले लगा रहे हो। हाँ, तो ऐसे कुछ ऐसे 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 वचन बोले जो बहुत कड़वे थे। शिवजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने त्रिशूल उठाया, अभी मार डाल देता है ध्रुव को, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। तो बेचारी पार्वती ने उनको रोका, पार्वती माता ने। तो फिर देखते कि ये भी कुछ प्योर गुडनेस में नहीं है, अभी किसके पास जाते हैं? विष्णु के पास। विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान एक ही काम करते हैं, क्या? लेटे रहते और लक्ष्मी को पाव दबाने में लगाते हैं। आप सोचो आपके घर में पत्नी है कोई जो रोज आपके पाव दबाती है? नहीं। एक डिवोटी है, वो मुझे अच्छा लगा मुझे उनका। वो कहते हैं वो बहुत दिन भर काम करते हैं अपने बिजनेस वगैरह, घर आते हैं उनके पास रीडिंग का टाइम नहीं होता। तो उनकी मैंने कहा, बीच में गया था उनके घर, तो मैंने कहा कैसे करते हो आप दोनों पति पत्नी? तो उन्होंने कहा मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, ऑफिस से इतना लेट आता हूँ, पैसे तो प्रसाद पाता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बिना भागवत सुनाए मुझे सोने नहीं देती। उनको फिक्स है वो, चाहे संसार के 12 बज जाए या कुछ भी हो जाए, पत्नी वो माता जी रोज 1 घंटा भागवत पढ़ेगी पति को सामने बिठाकर, और पति उनको सुनेंगे, पूरा ध्यान से सुनेंगे, और पत्नी पढ़ेगी एवरी डे सोने से पहले, क्योंकि लेट आते हैं, ये आइडियल है पति पत्नी। तो यहाँ लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती रहती है और उनका ध्यान अपने पति के मुख की ओर होता है, कहाँ देखती रहती है? चरणों को दबा रही है, लेकिन देखता रही है मुख कमल को। तो यहाँ आ गए महाशय भृगु जी, आते देखा नहीं किया अभी कैसे अंदर घुसो, दरवाजा गांव में नहीं किया, रिंग बेल भी नहीं बजाई, सीधा दरवाजा अंदर घुस जाते हैं और जाकर विष्णु के छाती पर लात मारते, प्रहार करते हैं। शयानम स्त्रीय उत्संगे पदा वक्षस्त तायतः तत उत्थाय भगवान सह। हाँ, लक्ष्म्या सताम गति। तो वहां कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं, आगे जोर से लात मारी ऐसे और भगवान उठ गए। आप सोचो हमें कोई थोड़ा सा पाव मारे तो क्या हालत होती है हमारी। तो वहां उनको लात मारे भगवान को, भगवान उठे, उठकर भृगु मुनि के चरण ढूंढने लगे। चरण ढूंढकर क्या करते हैं? कहते कि हे भृगु, मेरा तो वक्षस्थल है वो पत्थर से भी अधिक, पौलाद से भी अधिक कठोर है, आपके चरण जो कमल के भांति है इनको ठेस तो नहीं पहुंची, प्रहार तो नहीं हुआ, ज्यादा लगा तो नहीं। इस प्रकार भगवान अपने उस इससे दिखाते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, एक प्रकार से इतना प्रेम करते हैं। तो जब भगवान के वचनों को सुना जो चतुर्भुज भगवान है, भगवान ने कहा पादो रखे न भगवत तीर्थानाम तीर्थ कारिना, आपके चरण कमल धोने से उससे सारे तीर्थ पवित्र होते हैं, ऐसे आपके चरण कमल है। तो इस प्रकार से चरणों की ग्लोरीज गाते गाते हैं भगवान एक्सटेंसी में आ गए। भगवान भूल गए कि इसने मुझे क्या किया है, छाती पर लात मारी है, यहां वहां मारे तो चल जाता है, कहां मारे? छाती पर। तो लेकिन फिर भगवान ने जब ये वचन बोले तो भृगु मुनि सिर्फ भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक माताजी को फर्क पड़ा। किसको? लक्ष्मी को। हाँ, कई बार होते हैं ना, प्रभु जी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? माता जी को। तो यहाँ लक्ष्मी देवी को फर्क पड़ा। तो वहां जैसे ही लक्ष्मी देवी को इतना गुस्सा आया और ये भृगुमणि आ गए और सबको ये बता दिया और आनंद में तर सारे सेजेस, और फिर लक्ष्मी दुखी थी। लक्ष्मी ने सोचा, इस संसार का नॉर्मल मनुष्य जिसने आकर मेरे पतिदेव त्रिभुवन के स्वामी है, उनके पक्ष स्थल पर पाप प्रहार किया है और वो भी मेरे समक्ष, मैं नहीं होती तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने ये किया है, तो इस उनका नाम है क्या है, जैसे सुबह बोला था श्रीनिवास, क्या नाम है? श्रीनिवास। में जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी देवी निवास करती है, मतलब एक प्रकार से किसको लात मारी है वहां? लक्ष्मी को। इसलिए तो लक्ष्मी अनहैप्पी हो गई, दुखी हो गई। सोचा चलो नारायण इसको तो सहन कर रहे हैं, लेकिन मैं सहन नहीं करूंगी। तो फिर उस समय उन्होंने शाप दिया था ब्राह्मणों को, ये सारे ब्राह्मण इससे आगे निर्धन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनको मांग मांग के खाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण आज हमेशा भिक्षा दे ही भिक्षा मांगते। भृगु को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैं भी ऐसा एक बुक लिखूंगा, ब्राह्मणों को मांगना नहीं पड़ेगा, सारे लोग उनके पास आएंगे। उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम था भृगु संहिता। क्या नाम था? सारे मनुष्यों का फ्यूचर उसमें लिखा हुआ है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसके बारे में उस बुक में नहीं है। हमने वो बुक देखा है। तो इस प्रकार से जब लक्ष्मी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा मुझे अभी वैकुंठ में निवास नहीं करना है, अभी टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, बहुत बर्निंग पेन था उसके हृदय का। तो उन्होंने कहा मैं वैकुंठ छोड़ूंगी, भूलोक में जाऊंगी और कठोर तपस्या करूंगी इस पाप के प्रायश्चित के लिए। तो वहां से वो वैकुंठ को छोड़ती हैं, छोड़कर आती हैं इस जगत में और महाराष्ट्र में आके रहती हैं, कोल्हापुर में। कौन सा स्थान है? कोल्हापुर। तो लक्ष्मी का स्थान है वहां। जब वो आए, अभी वैकुंठ श्री, श्री वाला श्री नहीं, श्रील वाला श्री, श्री विहीन जब वैकुंठ हो गया तो भगवान अकेले हो गए, अंधकार छा गया, ऑपुलेंस खत्म हो गया एक प्रकार से। तो भगवान प्राण है, भगवान ने कहा मैं अकेला क्या करूं। तो लक्ष्मी के विरह में जिसको भगवान सहन नहीं कर पाते हैं, श्वेता द्वीप का जो चार में वो खत्म हो जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जब टेम्पल छोड़ के गई थी एक बार, तो जगन्नाथ और बलदेव को भूखा रहना पड़ा था, तो वैसे ही भगवान लक्ष्मी को ढूंढने के लिए इस जगत में आते हैं और ढूंढने का प्रयास करते हैं, ताकि भगवान सोचते हैं कि मैं उसको ढूंढकर क्या करूं, उसको वापस ले जाऊं। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं और आते आते इन जंगलों में आते हैं। सबसे पहले यहाँ कहाँ आते हैं? ये जो जंगल है शेषाचल का, ट्रैवल करते हुए हिल्स में आते हैं शेषाचल। हमने सुबह सुना इसका नाम शेषाचल क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान वैकुंठ में निवास कर रहे थे, सो रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कौन थे? शेषनाग। तो फिर वायुदेव आते हैं, उनका आपस में लड़ाई होता है कौन पावरफुल है देखने के लिए। शेष अनंत शेष सुमेरु को या पर्वत को टाइटली पकड़ते हैं, अपना क्या कहते हैं राउंड मारते हैं, बांध देते हैं, और वायु को उनको जोर से हवा से दूर फेंकना था, तो इम्पॉसिबल हो रहा था उनको फेंकना। तो फिर नारद जी वंडरफुल कीर्तन करते हैं, तो फिर उस समय जोर से हवा से उनको यहाँ फेंका जाता है, फिर आनंद शेष यहाँ निवास करते। भगवान कहते यही रहो, क्योंकि मैं वैकुंठ को छोड़कर आने वाला हूँ यहाँ लीलाएं करने के लिए। इस प्रकार से भगवान यहाँ आए, ढूंढते ढूंढते कहाँ ढूंढे लक्ष्मी को, उनको पता नहीं चल रहा था। फिर एक एरिया में आते यहाँ और वहां ऐसी तपस्या की मुद्रा में बैठते हैं जो इमली वृक्ष के नीचे था, और उस समय उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ना ठीक से सोने के लिए। तो फिर भगवान ये जो ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, वो लक्ष्मी के पास जाते हैं और लक्ष्मी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम क्या बनेंगे, बछड़ा और गाय। क्या बनेंगे? बछड़ा और गाय बनते हैं और लक्ष्मी बनती है ग्वालिन। क्या बनती है? तो ऐसी ही ये जो ग्वालिन है बछड़े और गाय को ले जा रही थी, तो चोल वंश के जो राजा है नारायणपुर, ये जो स्थान था, वो राजा और रानी उस गाय को और बछड़े को खरीद देते हैं। तो जब से ही ये गाय और बछड़े को खरीदा था और ये रानी बहुत उस गाय से प्रेम करती थी और उनके वहां दूध निकालने वाला एक ग्वाला भी था, तो जब रोज चराने के लिए ले जाते थे लेकिन बहुत दिन हो गया ये दूध ही नहीं दे रही है। तो रानी ने एक दिन पूछा, ग्वाले तुम दूध तो नहीं पीते हो जंगल में जो गाय चराने जाते हो, यदि दूध नहीं मिला आज तो तुम्हें मृत्यु दंड। इस व्यक्ति ने देखा कि गाय उसके स्तनों में तो बहुत दूध है लेकिन ये दूध कहाँ जाता है। एक दिन सोने को, रोज ही वो सोता था वहां गाय चराने जाते समय, और वो गाय जाती थी एक स्थान में जहाँ भगवान जहाँ बैठे थे और भगवान श्रीनिवास जो वैकुंठ को छोड़कर आए थे जगत में, उनके ऊपर एंट हिल बन गया था। क्या बन गया था? जैसे वाल्मीकि के ऊपर बना था वैसे भगवान के ऊपर बन गया और एक छेद था। तो ये गाय जाती थी और उसमें से दूध देती थी, सारा डालती थी, तो भगवान उस दूध को पीते थे भगवान श्रीनिवास। एक दिन इस ग्वाले ने सोने का बहाना बनाया और देखा तो देखा कि ये तो गाय वहां जाकर दूध देती है, इसको बहुत गुस्सा आया। इसके हाथ में जो कुल्हाड़ थी उस कुल्हाड़ को उठाता है और गाय को मारने के लिए जाता है। गाय को जैसे मारने के लिए जाता है तो भगवान श्रीनिवास उस एंट हिल से उड़ जाते हैं और उस कुल्हाड़ को अपने माथे पर ले लेते हैं, तब उनके बाल थोड़े से निकल जाते हैं। फिर एक स्त्री अपने बाल उनको डोनेट करती है। क्या करती है? अपने सर के बाल निकालकर भगवान को डोनेट करती है। तब से स्त्रियां भी यहाँ क्या करती है? मुंडन, भगवान को बाल अर्पित करना। तो जितना प्रेम भगवान ने जो वैकुंठ के नाथ हैं गाय के प्रति दिखाया, और फिर जब ये कुल्हाड़ से मारा तो देखा कि वो सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं, एक सबसे सौंदर्यवान व्यक्ति के रूप में खड़े हो जाते भगवान और रक्त ब्लड बहने लगता है। ब्लड जब बहता है तो जब राजा को भी बुलाया जाता है, वहां राजा आता है उस स्थान को देखते हैं, राजा डांटने वाला था तो भगवान श्रीनिवास उस राजा को सारी स्टोरी सुनाते हैं और फिर भगवान अकेले चलना शुरू करते जंगल में। फिर जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, वो भगवान को बताते हैं इस क्षेत्र के बारे में, वराह क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? वराह क्षेत्र के बारे में, क्योंकि भगवान वराहदेव पृथ्वी का जब उद्धार किया था तो यहाँ ही आकर उन्होंने विश्राम किया था भगवान वराहदेव ने। तो ऐसे वराहदेव भगवान फिर श्रीनिवास जिनके पास वैकुंठ छोड़कर आए थे, यहाँ कोई स्थान नहीं था, उनको ये स्थान प्रदान करते हैं और ये स्थान प्रदान करके वराहदेव कहते हैं कि इसका कुछ, बालाजी कहते हैं कि इसका रेंट मैं आपको चुकाऊंगा। तो रेंट क्या है? तो बालाजी भगवान वराहदेव को कहते हैं कि कलयुग में जो मेरे भक्त दर्शन करने आएंगे उनको मैं प्रेरित करूंगा, सबसे पहले आकर आपका दर्शन करें, किसका? वराहदेव का, और फिर बाद में आकर मेरा दर्शन और मुझे प्रणाम करें। इस प्रकार भगवान बालाजी ने ही ये कहा था कि इस प्रकार से मेरा दर्शन करना चाहिए। तो वराहदेव भगवान जब वहां थे तो उन्होंने कहा, हे श्रीनिवास, हे बालाजी, आप क्या करो, यहाँ निकट ही आपके जो शाश्वत माँ है, भगवान की शाश्वत माँ कौन है? यशोदा। तो वही शाश्वत माँ यशोदा इस युग में बकुला देवी के रूप में आई है। किस रूप में? मंदिर में देखा ना विग्रह बकुला देवी, बालाजी का दर्शन करने के बाद हम गए थे चरणाम से पहले, तो बकुला देवी के रूप में आई है, वो तुम्हारा केयर करेगी और विशेष दवाइयां तुम्हारे माथे पर लगाएगी। तो भगवान जब गए ढूंढते हुए थे, बबुला देवी का एक आश्रम हुआ करता था फॉरेस्ट में, तो भगवान ने बबुला देवी को देखा तो भगवान के हृदय में उनका वात्सल्य बढ़ा, और फिर बबुला देवी ने कंपोल मस और जो सैफरन वगैरह है उसका पेस्ट बनाया, भगवान के माथे पर लगाया, और भगवान हमेशा उसको धारण करते हैं उस पेस्ट को अभी भी। तो ये बबुला देवी यशोदा है, इस रूप में क्यों आए हैं, क्योंकि वो भगवान का विवाह देखना चाहती थी। यशोदा माता ने कृष्ण का विवाह कभी देखा नहीं, देवकी ने बहुत सारे विवाह देखे, तो लेकिन वो चाहती थी कि मुझे मैरिज देखना है कृष्ण का, इसलिए भगवान ने उनकी डिजायर पूर्ति करने के लिए यहाँ इस लीला में उनका अपना मां बनाया, ताकि विवाह की लीला वो देख सके, और फिर उनके द्वारा सारी शादियों की तैयारियां शुरू करवाई। तो फिर भगवान कुछ समय बीतता है, तपस्या करते हैं और घूमते इस हिल्स के ऊपर, और एक दिन अपनी माता बकुला को कहते हैं कि मैं शिकार करने जा रहा हूं। तो शिकार करने के लिए धनुष बाण आदि लेकर एक घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर सवार होते दौड़ते हुए जाते जंगल में, देखते एक हाथी, उस हाथी का शिकार करने के लिए वो दौड़ने लगे उस हाथी के पीछे, और वो हाथी उस स्थान में भागा एक ऐसे गार्डन में जहां आकाश राजा की कन्या जिनका नाम था पद्मावती, क्या नाम था, ये पद्मावती राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी और ये अपने सेवकों के साथ थी। तो ये जो पद्मावती जहां थी अपने सेविकाओं के साथ, वहां ये हाथी आता है और वो पद्मावती की स्तुति आदि करके वो हाथी गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और फिर जब श्रीवास श्रीनिवास जो भगवान है वहां आते हैं, पद्मावती को देखने मात्र से उनके सौंदर्य को देखकर वो पूछते हैं, हे पद्मा, नाम तो नहीं पूछा उन्होंने, कहा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मेरा नाम पद्मावती है, मैं किसकी कन्या हूं, राजा आकाश राज की। तो इन्होंने भी बोला मेरा नाम क्या है, श्रीनिवास, मैं चंद्रवंश में हूं, मेरे पिता वसुदेव और माता देवकी, और अभी मेरी मां का नाम क्या है, बकुला, और वो मेरे विवाह के लिए अभी पत्नी ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, पत्नी ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से जब पद्मावती की सेविकाओं ने देखा कि ये शिकारी है, और इन्होंने कहा, श्रीनिवास उन सेविकाओं को भी बोलते हैं कि मुझे तो अभी पद्मावती से प्रेम हो गया है और इसको भी मुझसे प्रेम हो गया है, तो मैं प्रपोज करूंगा विवाह के लिए। ऐसे ही बोल रहे थे तो सेविकाओं को बहुत गुस्सा आ गया, पहली मुलाकात में ऐसे बोल रहे हो, पत्थर उठाए और भगवान के ऊपर मारने लगे। फिर भगवान को वहां से भागना पड़ा और दुखी होकर आ गए अपनी मां के पास। कौन थी मां उनकी, बकुला देवी के पास आते हैं। तो बकुला देवी भगवान तो दुखी नहीं देख सकती माता यशोदा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगी उसके घर और शादी के लिए मनाऊंगी। ये पद्मावती कौन थी, पद्मावती वास्तव में त्रेता युग में कुशध्वज राजा जब यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ से मंत्रोच्चारण जब हो रहा था तो उसमें एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था वेदवती, क्या नाम था, लेकिन जब उसका विवाह का आयु हुई एज हुई तो उन्होंने कहा मैं तो केवल विश्व से विवाह करूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो राजा ने देखा इतना इजी नहीं है विष्णु को अचीव करना, अटेन करना, तो वो जंगल में जाती है तपस्या करने के लिए, और तपस्या कर रही थी तो उस समय रावण वहां से गुजर रहे थे। रावण ने देखा इतनी सुंदर कन्या, सुंदर कन्या विवाह छोड़कर यहाँ यज्ञ करने गए हैं, तपस्या करने के लिए बैठी है, तो फिर रावण ने कहा मेरी रानी बनो, किसकी रानी बनाओ, मेरी, और उसने उसके बाल पकड़े, तो इसने तुरंत अपने बालों को काट डाला और उसने कहा मेरे शरीर का आपने स्पर्श किया है, इसके कारण तुम्हारा जो जन्म है और आपका पूरा जो फैमिली है और तुम भी क्या हो जाओगे, एक स्त्री के द्वारा ही नष्ट हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और फिर देखते हम रावण किसका हरण करता है, सीता देवी का हरण करता है, सीता देवी का रावण हरण करता है, तो लेकिन जो ओरिजिनल सीता है वो अग्निदेव के पास होती है, लेकिन जो छाया सीता है वो ये वेदवती कन्या है। ये वेदवती छाया सीता है जो इतना कष्ट उठाती है भगवान राम और ओरिजिनल सीता के लिए, जो वहां निवास करती है लंका में जाकर, और जब वापस आ गए भगवान उसको लेकर, और जब अग्नि परीक्षा हो रही थी और जब ये ओरिजिनल सीता वापस आई, तो फिर तो जो ओरिजिनल सीता थी उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे राम, आपके लिए इस वेदवती ने बहुत कष्ट सहा है, आप प्लीज इसको भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भगवान कहते हैं अभी मेरा तो एक पत्नी व्रत है, मैं अगली बार प्रकट होऊंगा कलियुगा में तब क्या करूंगा, क्या करूंगा, इसको भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो ये वास्तव में ये पद्मावती यहाँ अक्षय राज, और ये किसी के स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है। जिस प्रकार से सीता देवी लोटस फ्लावर पर एक प्रकार से मिली थी, उसी प्रकार से पद्मावती भी थी। और जब पद्मावती जब भगवान से मिले उस समय, तब से उनका मन उसमें लगा हुआ था, बिल्कुल बीमार सी हो गई थी। तो भगवान ने सोचा, भगवान एक स्त्री का वेश धारण करके जाते बालाजी एक दिन, ताकि जल्द विवाह हो जाए। एक टेम्पल है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, जहां भगवान बालाजी किस रूप में है, स्त्री के रूप में है, क्योंकि एक बार भगवान स्त्री का वेश धारण करते हैं और जाते हैं किनके पास, अक्षय राज जो राजा है उनके घर में, ताकि वो देखते कि जल्दी शादी हो जाए, और शादी किससे हो जाए, भगवान मुझसे हो जाए श्रीनिवास के साथ। तो इसके लिए वो कई सारे ज्योतिषी का रूप धारण करके जाते भगवान, और उसका हाथ देखते ही कहते हैं, पद्मावती इसको तो प्रेम हो गया है, किनसे, श्रीनिवास से, इसका शादी तो जल्दी कर देना चाहिए, खुद ही है बोलने के लिए। हाँ, तो फिर वो जल्दी जल्दी राजा और ये सब अरेंजमेंट शुरू करते हैं। कहते हैं जब से लेनी का रूप धारण करके गए थे भगवान उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, और फिर जल्दी ही तैयारियां हो जाती है शादी की। और शुक्रदेव गोस्वामी सेल पर निवास करते थे उस समय, तो शुक्रदेव गोस्वामी डेट फिक्स करते हैं किस चीज का, मैरिज कब होगा इनका। तो भगवान ने सोचा भी मेरा विवाह है उसमें सारे देवी देवता आने चाहिए। आपने फोटो देखा हुआ, सारे देवी देवता थे, शिवजी अपने पूरे परिवार के साथ थे, छोटे गणेश, कार्तिकेय सबके साथ थे। वहां बहुत सारे वानर सेना भी थी, गरुड़ भी थे और हनुमान भी थे, नील भी थे, बहुत सारे लोग थे, सारे इंद्र चंद्र वरुण कितने देवी देवता थे। भगवान ने फिर सारे देवी देवताओं को इनविटेशन भेजा, और जो श्रीनिवास ने देखा इतना क्राउड, वो दुखी हो गए। उन्होंने सोचा इतना क्राउड शादी में आएगा, उनको भोजन कैसे खिलाऊंगा, क्योंकि ये तो गरीब थे, बकुला के पुत्र के रूप में जिनके पास एक छोटा सा आश्रम था, कुछ धन आदि नहीं था। भगवान ने सोचा जो खजान जी, कौन है भगवान की खजान जी, कुबेरा, कुबेर को बुलाते हैं, कुबेर तो दौड़ते हुए आते दंडवत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विवाह करना है, लोन चाहिए। क्या चाहिए, लाइफ में लोन जब आप जन्म लेते हैं ना तब से शुरू हो जाता है, मृत्यु तक लोन ही लोन हो जाता है, उसको चुकते करने में लाइफ चला जाता है। बच्चा जन्म लेता है उसके डिलीवरी के लिए लोन लेते हैं बेचारे लोग, वो पढ़ता पढ़ाई लिखाई करते उसके लिए लोन, और उसको जॉब लगवाना है उसके लिए लोन, शादी करनी है उसके लिए लोन, फिर फ्लैट लेना है उसके लिए लोन, लाइफ लोन से भरा पड़ा है। तो ये भगवान ने कहा मुझे लोन चाहिए, वो मेरा कहते कितना चाहिए, 14 लाख गोल्ड कॉइन्स, कितने, 14 लाख गोल्ड कॉइन्स, इतना बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो उन्होंने कहा कैसे चुकता करोगे, आप तो कुछ करते नहीं हो। तो भगवान कहते कि कलियुगा के अंत तक मैं चुकता करूंगा, वो भी मेरे भक्तों के द्वारा जो मेरा दर्शन करने आएंगे, कौन चुकता करेंगे, ये तो केवल ब्याज है, इंटरेस्ट जो उसका ऊपर का जो मूल रकम जो है वो भगवान कहते हैं वो फाइनली दी जाएगी। तब तक ये चुकती नहीं होगी, जितने भी लोग आए कलयुग के अंत तक मेरा दर्शन करने तब तक इसका जो इंटरेस्ट है वो पे होगा। तो इसलिए जो डिवोटीज वास्तव में क्या कर रहे, भगवान को हेल्प कर रहे हैं उनके विवाह में लिया हुआ लोन चुकता करने के लिए। तो फिर भगवान कहते हैं कलयुग के अंत में जाकर में जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान का विवाह हो जाता है, और भगवान का विवाह किसके साथ हो जाता है, पद्मावती के साथ होता है। तो ऐसे पद्मावती के साथ भगवान का विवाह होता है, और काफी विस्तार से सारी लीलाएं हैं, पद्म पुराण और स्कंद पुराण आदि भी तो कई चैप्टर्स में लिखा है, कई अध्याय हैं, जिसको कहते हैं वेंकटाचल महात्म्य, उसमें तीन स्थानों के महात्म्य पुराण है, जगन्नाथपुरी, वेंकटाचल और स्पिरिचुअल प्लेसेस के। तो समराइज मैं बताता हूँ, इनका विवाह आदि होता है और सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। फिर भगवान आकर सबसे पहले वहां निवास करते हैं, श्रीनिवास मंगापुरम। कौन सा स्थान है? श्रीनिवास मंगापुरम, जो सबसे पहला टेम्पल हमने देखा बालाजी का, जहाँ भगवान वहां पर 6 मंथ या कितने महीने रहे मैं भूल गया, 6 मंथ वहां जाकर रहते हैं। अब वहां से एक वे है जहां से भगवान ऊपर चढ़ते हैं और जाकर ऊपर रहने लगते हैं, और फिर कई सारी घटनाएं हैं। भगवान उस समय सरलता से कलयुग शुरू भी हो गया था और कलयुग के लोगों के साथ बात किया करते थे नॉर्मल वे में, तो चलिए एक समय फिर भगवान ने कहा नहीं ये उचित नहीं है मेरा आचरण, कलयुग के लोगों के साथ बात कर रहा हूँ गोपन ले, और वो मुझे बहुत सर्वसाधारण साधारण व्यक्ति के रूप में ले रहे हैं, जैसे कि मैं भी उनके बीच में से एक नॉर्मल व्यक्ति। तो फिर भगवान कुछ समय के बाद फिर विग्रह का रूप धारण करते हैं, राजा तोंडमल, ऐसे दो भाई थे पद्मावती के जिनका आपस में पटा नहीं, लड़ाई झगड़े हो गए, भगवान ने एक साइड लिया, ऐसे बहुत स्ट्रगल है पास टाइम से। फिर भगवान फाइनली वहां निवास करते हैं एक विग्रह के रूप में, और वहां परमानेंटली सारे जीवों पर अपने जो कृपा है हम वो प्रदान करते हैं, और जो भी उनका दर्शन करने जाता है उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं अपने धाम वापस जाने के लिए। तो ऐसे कई महान महान राजा हुए हैं और रानी हुई हैं। आप जो मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो वहां देखा होगा आपने 3 विग्रह थे, जब हम बाहर निकले थे प्रसाद पाकर, राजा कृष्ण देव राय, कौन थे, साउथ के अमेजिंग राजा हैं, इनका नाम भी इतना अमेजिंग है। लास्ट टाइम हम यहाँ थे 2 महीने के लिए, तो हमें इस राजा का महल दिखाने के लिए ले गए थे, यहाँ से नजदीक है 15 मिनट की दूरी पर ही है, जहाँ ये हिस्ट्री नरेशन होता है, बड़ा सा महल है और लाइट एंड साउंड शो है, जिसमें ये सब बालाजी का स्टोरीज और कैसे बालाजी की उस किंग ने सेवा की उसके रानी ने और ये सब चीजें सुनाई जाती है। तो हमने वो लाइट एंड साउंड शो अटेंड किया था वहाँ, इससे काफी चीजें हमें सीखने को या समझने को मिली। तो ऐसे महान महान राजाओं ने और महान महान जो एक क्वींस थी, रानियां थी अलग अलग राजाओं की, उन्होंने बालाजी की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दी हैं। तो बालाजी का कैसा है रूप, उनके हाथ वगैरह किसको याद है, शंख और चक्र है और एक अभय मुद्रा है और एक ऐसे उनके घुटने के पास हाथ है। हाँ, तो भगवान एक हाथ से अभय प्रदान कर रहे हैं या वर दे रहे हैं, और दूसरे हाथ से ये समझा रहे हैं, 2 मीनिंग है उसके। एक है भगवान नीचे हाथ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे चरण कमलों के शरण ग्रहण करो, करने से क्या होगा, आपको ये जो भौतिक सागर है वो घुटने तक ही होगा, इसलिए उनका हाथ कहाँ जाकर रुक गया है, घुटने के पास, देखा ना बालाजी का, ठीक से देखिए कल भी। तो इस प्रकार से भगवान सबको आश्वासन देते हैं अपने इस विशेष रूप के द्वारा। ये बालाजी वास्तव में एक बहुत बड़ी कहते हैं रहस्य है, रहस्यमय विग्रह है। तो जब हम भगवत के संग में आते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, दर्शन करते हैं बार बार, फिर हमें ये विग्रह सारे ओपन होने लगते हैं धीरे धीरे। क्या होते हैं? ओपन होने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखें क्लोज नहीं है, आंखें खुली हुई है। तो वही पास्ट टाइम है, मैं एग्जैक्टली भूल गया, लेकिन उसका सार ये है, उनके भगवान की आयु बहुत आकर्षक है, और किसी के आय से आय आंखों से आंखें मिल जाती है उनकी, तो उस व्यक्ति के हो जाते हैं भगवान, छोड़ के भाग जाते हैं अर्जुन। इसके लिए उनकी आंखों को क्या करते हैं, ऐसे क्लोज रखते हैं, ज्यादा आय इसमें मिलनी चाहिए, नहीं तो भक्त के साथ भाग जाएंगे, भक्त से प्रेम हो जाएगा बहुत अधिक जीवन से, इसलिए वो तिलक से। फिर उनके जितने भी पार्षद है सबके आंखों में लगा जाते, देखो रावण चित्र का विग्रह भी देखो, जय विजय का भी देखो, सबके आंखों में वही स्टैंडर्डाइज फॉलो किया है। तो जनरली एक ऐसा पास टाइम हुआ था एक व्यक्ति के साथ, जैसे बाके बिहारी है वृंदावन में, किसको विग्रह याद है कैसे दिखते हैं? मैं तो कई बार शुरुआत में जाता था, कभी मुझे याद ही नहीं हमें वो दिखते कैसे, क्योंकि वो हमेशा पर्दा ऐसे ऐसे करते रहते, बंद खोलते बंद करते खोलते बंद करते, क्योंकि वो एक कई बार वो क्या हो गए थे, चले गए थे दर्शन करने वालों के साथ, क्योंकि आंखों से आके मिल गए थे, इसलिए बालाजी की आंखों में वो डालते तिलक, विशेष तिलक। और वैसे अपने सिंह है मतलब ये मार्क है, इसलिए वो तिलक देखने मात्र से पूरे बालाजी स्मरण हो जाते हैं आपको, या वो ऊपर ओनली शंख चक्र और तिलक, जहां आपने प्रसाद पाया बस सिंपल सा था, देखो एक माउंटस माउंटस बनाए थे, और पूरा जैसे गुफा में क्या रखा हुआ है उन्होंने, वो ओनली दो शंख और चक्र और बीच में तिलक, उससे क्या पता चलता है कि बालाजी का विशेष रूप, इस प्रकार से बालाजी की महिमा है, ग्लोरीज है। और वास्तव में पुराणों में और इन ग्रंथों में बहुत लंबे लंबे अध्याय में इन सबका वर्णन है, तो सुने पढ़े जाने और प्रचार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तिरुपति बालाजी की, श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन तिरुपति भक्त वृंद की जय। प्रेमानंद तो हम यहाँ कोई है नहीं, इस पर तिरुपति भक्त का आभारी है कि उन्होंने इतना अमेजिंग फैसिलिटी दिया कि आप अपने भाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इनको कह रहा था कि आप पूरे एसी में बैठकर तिरुपति में आकर हालोवी कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ तो जेबीसी मीटिंग्स होती है, आकर अभी तो नया हॉल बनाया उन्होंने, यहाँ आकर आराम से बैठे, कोई टेंशन। वास्तव में किसकी असीम कृपा है, पता नहीं क्या पूर्व स्वीकृति थी, ऐसे स्थान में आकर बैठकर किसके बाद